नमोयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते शाश्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाद्देश तारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तत सप्तदशे जात सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसा ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसा ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः हरे कृष्ण सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः सप्तदशे Thank you.
માતાજી तत्पश्चात इसके बाद सप्तदश सत्रहवें अवतार में जातः प्रकट हुए सत्यवत्याम सत्यवती के गर्भ से पराशरात पराशर मुनि द्वारा चक्रे तैयार किए रचना किए वेद तरो वेदों के कल्प वृक्ष की शाखा शाखाएं दृष्ट्वा देखकर पुंसः सामान्य व्यक्तियों के अल्प मेधसः अल्पज्ञ कम बुद्धि वालों के लिए अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। तत्पश्चात सत्रहवें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ हैं, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तात्पर्य मूल रूप से वेद एक है, किंतु श्रील व्यास देव ने मूल वेद की चार भाग में विभाजित कर दिया, साम यजुर् ऋग तथा अथर्व, और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसी विविध शाखाओं के रूप में की। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं, उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान और स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाले संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों तथा स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं है। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथा कथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रह गए हैं। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के परिजन मित्र, लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों से की जाती है। श्रील व्यास देव ने द्विज बंधुओं शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों की विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज व्यास देव के आविर्भाव के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप श्री भगवान के विषय में सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह शुभ लक्षण है। जीव की सबसे बड़ी सफलता विशेषता यह है कि वह भगवान के विषय में सुनने बोलने और स्मरण करने के लिए तत्पर हो। तो आज भगवान व्यास देव के आविर्भाव तिथि को व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, सुप्रसिद्ध व्यास पूर्णिमा। यद्यपि इसके और भी अलग अलग विशेषण हैं, व्यास पूर्णिमा, अषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, और ब्रज में प्रसिद्ध है मुड़िया पूर्णिमा। तो इस सब का अर्थ बताएंगे। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में, जहां से श्लोक उच्चारण किए हम लोग, सुत गोस्वामी भगवत अवतार का एक सूची प्रस्तुत किया है। श्री भगवान समय समय पर इस प्राकृत जगत में आते हैं, अपने अप्राकृत वैकुंठ जगत से उतरते हैं इस प्राकृत जगत में, इसको अवतार कहते हैं। अवतरती इति अवतार, ऊंचे स्थान से नीचे उतरना, इसको अवतार कहते हैं। अपने अप्राकृत सुखमय वैकुंठ धाम से कभी कभी भगवान इस प्राकृत जगत के जीवों की दुर्दशा देखने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए आते हैं, तो उसको अवतार कहते हैं, उतरते हैं इस प्राकृत जगत में। तो भगवान के अवतार के कई डिवीजन हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को उपदेश करते हुए चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि भगवान आते हैं प्राकृत जगत में, उसको अवतार कहते हैं, लेकिन ये अवतार के छह प्रकार हैं। छह प्रकार, छह डिवीजन है, लेकिन इसके अंतर्गत अनंत अवतार है। इसमें कुछ मुख्य अवतारों का लिस्ट यहां दिया गया है। तो छह प्रकार के अवतार हैं, वो है पुरुषावतार, गुणावतार, जुगावतार, मनवंतरावतार, शक्त्यावेशावतार और लीलावतार। उसकी थोड़ी संक्षेप में परिभाषा, जब श्री भगवान अपने को विस्तारित करते हैं और मुख्य रूप से प्राकृत जगत की कल्पना करते हैं, तो इसके लिए भगवान को एक विशेष पुरुष के रूप में अवतरित होना पड़ता है, अपना रूप बदलना पड़ता है, विस्तार करना पड़ता है। तो उनको पुरुष कहते हैं, पुरुषावतार। संपूर्ण अप्राकृत जगत को घेर कर बहने वाली एक नदी या समुद्र है, समुद्र ही है, उसको कहते हैं कारणोदक या कारणोबधाई, कारणोबधि, कारण अवधि, जगत के कारण है। वहां भगवान अपने को प्रकट करते हैं और वहीं से जगत की कल्पना करते हैं, संकल्प करते हैं। केवल उनके संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलकर उस कारण जल में तैरने लगता है। वह प्रथम पुरुषावतार है, कारणोदकशाही। और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करके भगवान आधा जल से भर करके उसमें शयन करते हैं, तो उनको कहते हैं द्वितीय पुरुषावतार, गर्भोदकशाही। और उन्हीं के नाभि से कमल निकलता है और उस पर ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तो फिर ब्रह्मा को जब ज्ञान देते हैं जगत सृष्टि के लिए और पांच भौतिक आदि महत तत्व देकर उनको आज्ञा देते हैं कि सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जब सृष्टि कर देते हैं विविध प्रकार के वस्तुओं का, जीव समुदाय का, उसमें अलग अलग लोक लोकांतरों का, तो इस व्यवस्थित जगत को चलाने के लिए भगवान दूसरे पर भरोसा नहीं करते, स्वयं उसमें इन्वॉल्व होते हैं और ब्रह्मा के ऊपर अपना ऑफिस रखते हैं, वो है क्षीरोदक, और उसमें भगवान निवास करते हैं। तो तृतीय पुरुषावतार क्षीरोदकशाही, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही। और उसी ऑफिस में जगत में जब कोई डिस्टर्ब होता है तो देवता लोग अपना एप्लीकेशन देते हैं क्षीरोदकशाही के पास, एक गड़बड़ी हो रहा है। तो क्षीरोदकशाही तीन काम करते हैं, जगत को व्यवस्थित पालन करने का काम, और परमात्मा रूप से सभी के जीव हृदय में रहने वाले, और पुरुषावतार के रूप में भी। तो क्षीरोदक शाही कॉमन दो अवतार में भाग लेते हैं, एक पुरुषावतार में और फिर प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके भगवान तीन रूप में जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। तो सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा रजोगुण को स्वीकार करके और सत्वगुण को स्वीकार करके वही क्षीरोदक शाही यहाँ गुणावतार भी स्वीकार करते हैं, सत्वगुण को स्वीकार करके पालन करते हैं और तमोगुण को स्वीकार करके विनाश करते हैं शिव के रूप में। तो पुरुषावतार के साथ गुणावतार में भी भगवान भाग लेते हैं क्षीरोदक शाही। तो पुरुषावतार भी है और गुणावतार भी कॉमन अवतार है। और तीसरा अवतार है कि प्रत्येक युग में युग धर्म की स्थापना करने के लिए श्री भगवान आते हैं, उनको युगावतार कहते हैं, उनका विविध नाम है अलग अलग युगों में। और फिर संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाली एक सरकार है, उसको कहते हैं मनवंतर सरकार। तो उस सरकार में भी भगवान भाग लेते हैं, उसको कहते हैं मनवंतरावतार। तो मनवंतर सरकार के छह फैकल्टी हैं। मनु महाराज, कुछ सिलेक्टेड लोग मनुपुत्र होते हैं, दूसरा विभाग इंद्र, और चौथा है इंद्र के सहायक कैबिनेट मिनिस्ट्री जो देवता अलग अलग फैकल्टी संभालते हैं, और चौथा मनवंतरावतार। और मनु, मनुपुत्र, इंद्र, इंद्र के सहायक देवता, और पांचवा सप्तर्षिगण, और छठवां मनवंतरावतार, भगवान मनवंतरावतार। तो इस प्रकार प्रत्येक मनवंतर में 71 चतुर्युगी एक एक मनु शासन करते हैं, उसमें भगवान आते हैं, उनको मनवंतरावतार कहते हैं। तो चार अवतार की चर्चा हुई, पुरुषावतार, गुणावतार, युगावतार और मनवंतरावतार। पांचवा अवतार का वैरायटीज है शक्त्यावेश अवतार। कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति में अपनी शक्ति देकर भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, रक्षा करते हैं, शक्त्यावेश अवतार। तो शक्त्यावेश अवतार अनेक हैं। तो श्रील व्यास देव शक्त्यावेश अवतार है, भगवान की शक्ति इनके अंदर उतर कर आई है। देवर्षि नारद शक्त्यावेश अवतार है, सनकादिक चतुष कुमार शक्त्यावेश अवतार है, भगवान परशुराम दुष्ट क्षत्रियों के विनाश के लिए आए, शक्त्यावेश अवतार है। तो अनेक शक्त्यावेश अवतार हैं, उसमें व्यास देव भी हैं। पांचवा अवतार का डिवीजन हुआ। छठवां, जब स्वयं भगवान अपनी इच्छा से कोई विशेष आनंद की अनुभूति करने के लिए, कुछ खेलने के लिए इस जगत में आते हैं, उनको कहते हैं लीला अवतार। इसे मत्स्यावतार या स्वयं श्री कृष्ण का अवतार, लीला अवतार है। तो इस प्रकार मैं इसकी चर्चा इसलिए कर दिया कि व्यास देव भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। और एक बार एक दशाध्य निषाध्य की पुत्री सत्यवती को गंगा तट पर पाकर त्रिकालदर्शी पराशर मुनि ने विचार किया कि इस मुहूर्त में अगर गर्भाधान किया जाए तो साक्षात भगवान के अंशावतार कृष्ण द्वैपायन व्यास जी आएंगे। तो लेकिन समय बहुत कम था, तो ऐसे मुनि एक निषाद की बेटी को, जिसका नाम सत्यवती है, सुप्रसिद्ध, वो मत्स्यगंधा थी, मछली का गंध उसके शरीर से निकलता था, लेकिन पराशर मुनि ने गंगा जल छिड़क करके उसको पद्मगंधा बना दिया और तत्कालिक समय पर विचार करके उनको मंत्रों से गर्भाधान किया। यद्यपि वो तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन पराशर मुनि समय को उपयुक्त समय जानकर उसको गर्भाधान किए और इसके साथ आशीर्वाद भी दिए, इसके कारण तुम दूषिता नहीं हो जाओगी, अपवित्र नहीं मानो जाओगी, कलंकित नहीं होगी, तुम निष्कलंकिता रहोगी, और इसके साथ विश्व का सबसे बड़ा सम्राट तुम्हारा पाणी ग्रहण करेगा, तुम रानी के रूप में जानी जाओगी। एक निषाद की, एक दशाध्य की केवट की बेटी होकर भी तुम विश्व सम्राट की पत्नी बनोगी। तो सत्यवती स्वीकार कर ली लेकिन बहुत काल तक गर्भ का वहन करना उसके बस की बात नहीं थी, तो पराशर जी की कृपा से वह गंगा के द्वीप में ही बच्चे का जन्म दे दी। तो बच्चा सावला सलोना था, इसलिए उसका नाम कृष्ण है, लेकिन गंगा के द्वीप में जन्म लेने के कारण उसको द्वीपायन कहा गया। द्वीप ही आयन है, जिसका आश्रय घर है, इसलिए उस बच्चे का नाम हुआ कृष्ण द्वीपायन। तो ये भगवान के अंशावतार हैं और उन्होंने भगवान की शक्ति से समस्त वैदिक वाङ्मय को लिपिबद्ध किया। अभी आप सुन रहे हैं कि चक्रे वेद तरो शाखा दिष्ट्वा पुंसोल्प मेधसः। सुत गोस्वामी कहते हैं जब भगवान व्यास ने विचार किया, देखा कि आने वाले कलयुगी लोग बहुत कम बुद्धि के होंगे, सुनकर ज्ञान नहीं धारण कर पाएंगे, उनको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो अल्प मेधसा जानकर, कम बुद्धि वाले जानकर, उन्होंने वेद को, एक वेद को कई भागों में बांटा, विस्तार किया, और इसी विस्तार का नाम व्यास है। संस्कृत व्याकरण में दो शब्द है, समास और व्यास। समास का अर्थ है शॉर्ट, संक्षेप में कुछ कहना, सूत्र रूप में कहना, उसको समास कहते हैं, और उस सूत्र की व्याख्या करना व्यास है, विस्तार करना। तो व्यास देव ने मूलभूत ज्ञान को वेदांत सूत्र के रूप में लिखा, जो समास के रूप में, और उसी सूत्र को, ब्रह्म सूत्र को, फिर उपनिषदों, पुराणों और वेद के विविध शाखाओं में विस्तार किया। तो इसके कारण इनको व्यास कहा गया, विस्तार करने के कारण। तो व्यास देव ने समस्त ज्ञान को दो डिवीजन दिया, दो भाग, एक को कहते हैं पराविद्या और एक को कहते हैं अपराविद्या। व्यास देव सब जानते हैं, सातवें अध्याय में वर्णन करते हैं सुत गोस्वामी कि जब देवर्षि नारद के उपदेश से व्यास देव गंभीरता से विचार किए और गंगा के तट, गंगा में स्नान करके अपने को शुद्ध करके आसन पर बैठकर परम पुरुष भगवान का चिंतन किए मन से, कहते हैं भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहितो मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम। परम पुरुष का दर्शन किए और उनके पिष्ट भाग में रहने वाली, हमेशा छिपने वाली, हमेशा संकोच करने वाली माया को भी देखे, उनके पीछे वो सामने नहीं आती है। इसको देखे क्यों नहीं सामने आती है, क्योंकि भगवान के सामने अपने को अपराधिनी महसूस करती है, उन्हीं के अंशभूत जीवों को सताती है, इसके कारण सामने आने में संकोच करती है। यद्यपि यह भी भगवान की एक सेवा है, जैसे सरकार के एक विभाग है जेल विभाग, जो अपने ही देश के नागरिक को अरेस्ट करके रखा जाता है, यदि यह कार्य बड़ा क्रूरता का है कि किसी को पकड़कर डंडा लगाकर जेल में बंद करना, तो इस कारण से वो सामने नहीं आती है। करती क्या है, यया सम्मोहितो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम परो अपि मनुते नर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। जो अप्राकृत भगवत अंश जीव है, वो जिस माया के चंगुल में आने के बाद अपने को माया का ही विकार, माया का ही त्रिगुणात्मक मानता है, हम माइक व्यक्ति हैं, हमारा संसार है, हमारे संबंधी हैं, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारा घर, हमारी स्त्री, हमारे बच्चे, इस स्थिति में जो त्रिगुणात्मक जगत में पड़ जाते हैं, इनको देखे व्यासदेव कि कैसे माया सताती है। आगे रोग के लिए टेस्ट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, क्या क्या चीज है इसके अंदर, कौन सा रोग है। तो आगे जीव की दशा पर विचार किए, कैसे जीव माया के द्वारा सताया जा रहा है। जब रोग की जानकारी हो गई, तब क्या किए कि अनर्थो पश्मम साक्षात, इस माइक अनर्थ के उपशमन के लिए, जीव माया में पड़ा है, इसको माया से निकालने के लिए साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही इसमें प्रबल साधन है, इस पर विचार किए, लेकिन लोकस्य अजानतो, ये दुनिया के लोग इस रहस्य को नहीं जानते हैं। लोक के दृष्टि में अज्ञान में है एक रहस्य, और विद्वान व्यास देव इसको जानते हैं। इसलिए चक्रे सातवत संहिताम, यह जानकर कि ये अल्पज्ञ लोग इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए उन्होंने सातवत संहिता श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो दृष्टवा पुंसो अल्प मेधसः, जीवों की दुर्दशा को देखकर व्यास देव ने शास्त्रों की रचना किया। तो दो प्रकार के ज्ञान दिए, एक को कहते हैं पराविद्या, एक को अपरा। इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पराविद्या का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान जिसको कहा गया है। पराविद्या से मनुष्य ठीक ठीक परम ब्रह्म श्री कृष्ण को जान पाता है, और कृष्ण से अपने संबंध को जानता है, और संबंधानुरूपी अपने कर्तव्य को जानता है। क्या हमारा कर्तव्य है? तो वेदांत सूत्र और उसके भाष्य के रूप में श्रीमद् भागवतम पराविद्या है। वेदांत सूत्र मूल रूप में पराविद्या है, और श्रीमद् भागवत उसका भाष्य है, उसकी व्याख्या है। कोई और भागवत और वेदांत सूत्र ही पराविद्या है, अगर इतना ही कह दिया जाए तो एक प्रश्न उठेगा कि और भी पत्र पत्रिकाएं इतने लिखे जा रहे हैं, वो क्या है? बैक टू गॉड हेड, भगवत दर्शन आदि। तो इसके विषय में जो कोई भी साहित्य जो आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक आईडी पहचान और आत्मविज्ञान को बताता है, उसको पराविद्या कहते हैं। जो साहित्य, जो पुस्तक श्री भगवान के विषय में बताता है, भगवान और हमारे बीच के संबंध को बताता है, और उस संबंध के अनुरूप हमारे कर्तव्य को बताता है, वह है पराविद्या। यह है वेदांत सूत्र की व्याख्या, चाहे कितना हूं किया जाए, जैसे समझा जाए, जिस भाषा में कहा जाए, उसको पराविद्या कहते हैं। और अपराविद्या भौतिक ज्ञान, मतलब संसारिक जीवन शैली का ज्ञान। तो सारे वेद, अब देखिए ध्यान से सुनिए, सारे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा उसके अनुवर्ती शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, आयुर्वेद, स्वास्थ्य विज्ञान और नीति शास्त्र आदि सभी अपराविद्या के अंतर्गत आते हैं, चारों वेद भी। अब आप आश्चर्य करेंगे, वेद तो हाँ, वेद में जो वैदिक ऋचाओं के द्वारा मंत्रोच्चारण करके, हवन करके उत्कृष्ट स्वर्गादिक लोक प्राप्ति की बातें हैं, वो प्राकृत ही है, स्वर्ग अप्राकृत जगत नहीं है। तो जो साधन बताता है स्वर्ग जाने का या उच्चतर लोक प्राप्त करने का, वो सब अपराविद्या है, और उसी के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को बताने वाला और वर्णाश्रम का निरूपण करने वाला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सब ज्ञान देने वाला ये अपराविद्या है, ये प्राकृत है। इसीलिए तो महाप्रभु चौंका देने वाली बातें कहे सनातन गोस्वामी से, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वधर्म करियाऊ से ही रौरव पड़ी मजे। कहते हैं कि चारों वर्णाश्रमी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, वानप्रस्थी और सन्यासी ठीक ठीक अपने धर्मों का पूरा परफेक्ट पालन करें, फिर भी नरक चले जाएंगे, रौरव पड़ी मजे। क्यों? तो यदि कृष्ण नहीं भजे, और कृष्ण का भजना, कृष्ण की भक्ति क्या है? ये पराविद्या है। और जो कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त सारी बातें बताती है, उसको अपराविद्या कहते हैं। तो अपराविद्या का वर्णन क्यों किए व्यास जी? क्योंकि लोगों का स्तर उतना ऊंचा नहीं है, अलग अलग स्तर के लोग हैं। अब प्राइमरी क्लास के लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नहीं पढ़ाया जाएगा, तो अस्त्र को विकसित करने के लिए उन्होंने अनेक भागों में विभाजित कर दिया शास्त्रों को, जो जिस स्तर से वहीं से ऊपर उठे, लेकिन ऊपर नहीं उठ पा रहे थे, वो अपने इच्छा और अपने स्वभाव के अनुरूप साधन को देख करके उसमें आसक्त हो रहे थे। इसीलिए नारद जी डांटते हुए कहे, स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम, लोग अपने स्वभाव के अनुसार तुम्हारे शास्त्रों से रस ले रहे हैं और उसी में अनुरक्त हो जाते हैं, इससे लीक छूट जाता है, मेन पटरी से गाड़ी हट जाती है, और अब सिर पकड़कर क्या बैठे हो, जो परा विद्या की व्याख्या है उसको किया ही नहीं, अपरा की व्याख्या कर दिया दुनिया भर के। सिर मत पकड़ो, परा विद्या की व्याख्या करो, तब चक्रे सातो संहिताम, तब श्रीमद भागवतम की रचना की है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने इन सब तत्वों की व्याख्या की, इसके कारण उनको व्यास कहा गया। तो इस परंपरा में शास्त्र की व्याख्या जो करता है उसको भी व्यास कहते हैं, जो इस आसन पर बैठता है उसको व्यास ही कहते हैं, आसन का ही नाम है व्यास आसन, ये व्यास का आसन है, व्याख्या करने वाला आसन है, इसलिए व्यास के प्रतिनिधित्व करने वाले को व्यास कहना उचित है। उसकी पूजा भी को भी व्यास पूजा कहते हैं, व्यास जी की पूजा। लेकिन हमारे गुरु महाराज एक विशेष बात कहते हैं कि इस माइक का काम है हमारे आवाज को ऊंचा करना, एम्पलीफायर करना, इसको ज्यादा उच्च ध्वनि करना, लेकिन उसी को जो मैं बोल रहा हूं बीच में कुछ की काय करेगा तो इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। कभी कभी सीटी मारने लगता है उसको अच्छा नहीं माना जाता है। जो मैं बोल रहा हूं उसी को उच्च ध्वनि के रूप में देना है। तो जो इस आसन पर बैठकर व्यास की बातों को ही व्याख्यायित करे वह व्यास के प्रतिनिधि है। कुछ अपनी मिर्च मसाला लगाने लगे वो नहीं, कुछ मनोरंजन करने लगे व्यास के आसन पर बैठकर वह व्यास का प्रतिनिधि नहीं है। तो शास्त्र के ज्ञान के द्वारा लोगों के अज्ञान को हटाना एक गुरुतर कार्य है, भारी कार्य है, कठिन कार्य है। इसलिए शास्त्र प्रवक्ता को गुरु कहा जाता है, ये साधारण काम नहीं है। शास्त्र को देकर, लाइट देकर अंधकार को हटा देना, किसी के अज्ञान को हटाकर ज्ञान देना, ये है गुरु का काम। इसलिए उस वक्ता को, व्यास को गुरु भी कहते हैं। तो अब स्थिति है कि गुरु का स्वरूप क्या है, गुरु का कार्य क्या है, अज्ञानी जीव को ज्ञान देना। और वो ज्ञान ऐसे नहीं दिया जाता है, फैशनबाजी नहीं है, भीतर की करुणा है। जैसे मरुस्थल में, ये उधर पुष्कर में एक सरोवर है, या मरुस्थल में कोई सरोवर हो और वहां एक मछली फुदकते हुए अचानक सरोवर के बाहर आ जाए और वो भूल जाए कि सरोवर की दिशा किधर है, और सरोवर के विपरीत दिशा में मरुस्थल के बालू के रेतों पर जाने लगे, तो कोई दयालु व्यक्ति देख ले, उसकी दृष्टि पड़ जाए कि सरोवर के विपरीत दिशा में जा रही है, तो जिस करुणा से प्रेरित होकर उसके दिशा को मोड़ दे सरोवर की तरफ, यह है गुरुता। कृष्ण से बहिर्मुख जीव जब कृष्ण को छोड़ करके बाह्य संसार के भोगों के तरफ उन्मुख हो जाता है, ऐसे जीवों पर विशेष कृपा करके जो कृपालु जन उस बहिर्मुख जीव को कृष्ण के ओर मोड़ देते हैं, यह है गुरुता, इसको गुरु कहते हैं। यह गुरु का स्वरूप है, स्वभाव है, लेकिन यह गुरुता किसी व्यक्ति विशेष का गुण नहीं है, यह भगवान की अद्भुत अहेतुकी कृपा का परिणाम है। भगवान की करुणा जब किसी जीव को अपने ओर मोड़ने के लिए होती है तो किसी को माध्यम बनाकर वो कृपा पूर्वक अपने तरफ लाते हैं। इसलिए उस भगवत कृपा को गुरु कहते हैं। गुरु तत्व तो क्या है, भगवत कृपा। इसीलिए ऐसे कृपा धारक व्यक्ति को ही डिवाइन ग्रेस भी कहते हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण के कृपा की साक्षात प्रतिमूर्ति। हम लोग श्रील प्रभुपाद को ही डिवाइन ग्रेस कहते हैं, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। कृष्ण की कृपा ही मूर्तिमती रूप में आई है और विषयांध पश्चात जगत के लोगों को भी कृष्ण की ओर मोड़ दिए। यह असाधारण कृपा है। तो एक विशेष ध्यातव्य बात है, दो विशेष बात ध्यान देने लायक है। वह यह है कि वह कृपा, कृष्ण कृपा उसी व्यक्ति को प्राप्त हो पाती है जो कृष्ण कृपा के कनेक्शन में है, तभी वह गुरु रह सकता है। अर्थात कृष्ण संबंध रहित होने पर उसकी गुरुता समाप्त हो जाती है। कृष्ण की कृपा उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो वहां से अनवरत आती है, जो भगवान के कनेक्शन में रहता है। तब प्रश्न होता है कि गुरुता समाप्त हो जाती है, तो हम लोग रोज रोज गाते हैं कि जन्मे जन्मे प्रभु से ही, तो इसी जन्म में गुरुता समाप्त हो सकती है। तो जन्म जन्म तक को कैसे हमारा गुरु है, कैसे पूज्य है? इसका अर्थ है कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरुता कृष्ण की कृपा शक्ति को कहते हैं, और वह कृपा शक्ति किसी के माध्यम से जीव का उद्धार जन्म जन्मांतर करते रहेंगे। वह विशुद्ध कृष्ण भक्त जो गुरु के रूप में जगत के हित के लिए आया है, तो एक नलायक शिष्य जो ठीक से फॉलो नहीं कर पाया तो उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा, तो उसके साथ गुरु भी घसीट कर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। उनकी जो गुरुता है, कृपा शक्ति, वो फिर किसी के माध्यम से उसका उद्धार करती है। वह है शाश्वत गुरुत्व, कृष्ण कृपा। उसी पावर सोर्स से संबंधित व्यक्ति श्री कृष्ण के समान ही आदरणीय पूजनीय हो जाता है। लेकिन कनेक्शन हटने के बाद रीएनसिएशन की भी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि चार्ज खत्म हो जाता है। जैसे लोहा आग नहीं है, लेकिन आग के संपर्क में एक सरिया को रखा जाए और आग के संपर्क में आकर लाल हो जाए, तो भ्रम बस उसको सरिया नहीं समझना चाहिए, जला देगा। उसी प्रकार जो कृष्ण के कनेक्शन में रहने वाले, ये मर्त्य मनुष्य शरीर में रहने वाला अगर कोई जीव भगवत कृपा पात्र, देखने में तो मनुष्य जैसा है, लेकिन वो सामान्य मनुष्य समझकर व्यवहार करेंगे तो विनाश हो जाएगा। एक गुरुत्व शक्ति जब उतर कर आई है, उसे सावधान रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो एक साधारण मनुष्य है, कुछ भी उटपटांग व्यवहार कर ले। उस कृष्ण की कृपा धारण करने के कारण वह कृष्ण के समान वंदनीय है, पूजनीय है, आदरणीय है। तो लेकिन कनेक्शन हटने पर वह सरिया फिर धीरे धीरे ठंडा होकर लोहा हो जाता है। जो आग लाल है वो ठंडा हो जाता है। तो यह कनेक्शन क्या है? कृष्ण की कृपा है, कृष्ण की भक्ति है, ज्ञान है। तो उनके कनेक्शन में रहना चाहिए। और दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि ज्ञान दो तरह से अर्जन किया जाता है। ये तो ऊपर की बातें तो शिष्य के लिए कह दिया ध्यान देने के लिए, लेकिन अब गुरु के लिए विशेष बात यह है कि ज्ञान दो प्रकार से अर्जन किया जाता है, सुनकर और देखकर। अदृष्टाद अश्रुताद भावा नो भाव उपजायते, भगवान कहते हैं उद्धव से एकादश स्कंध में, बिना सुने और बिना देखे कोई भी भाव हृदय में नहीं आ सकता है। हृदय में जो भाव आता है देख कर और सुनकर। तो शिक्षकों को मात्र सैद्धांतिक प्रवचन सुनकर बच्चे नहीं समझ पाते हैं, देखते भी हैं, ध्यान से देखते हैं, बल्कि देखते ज्यादा है, सुनते कम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया कि कृष्ण गीता में सैद्धांतिक प्रवचन किए और प्रवचन करने के बाद अपने नित्य धाम गोलोक में चले गए, तो विचार करने लगे, बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन किया लेकिन आचरण तो नहीं किया। तब विचार करें, अपने न कैले धर्म सीखन न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाय। जब स्वयं आचरण नहीं करेंगे तो इस सिद्धांत को लोग नहीं समझेंगे। ये सिद्धांत गीता और भागवत दोनों में है। गीता के सिद्धांत याद है ना, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद देवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरते लोकास्तदनुवर्तते। लोग नकल करते हैं, जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं उनके आचरण का नकल साधारण लोग करते हैं। ये भगवद गीता के तीसरे अध्याय में 21 नंबर का श्लोक है, भागवत के छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय में चौथे नंबर के श्लोक में विष्णु दूत बोलते हैं कि आश्चर्य है तुम लोग सचमुच यमराज के परिकर हो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। कहे नहीं नहीं एकदम पक्का, अपना आईडी भी दिखाने लगे, पक्का हम यमराज के परिकर हैं। कहते हैं महा आश्चर्य, यमराज को भी धर्म का ज्ञान नहीं है? जो धर्म के रक्षक हैं, जो इतने बड़े विश्व के सुप्रीम जज हैं, लोगों के अच्छे बुरे कर्मों का निर्णय लेते हैं, उनको धर्म का ज्ञान नहीं है? अगर यमराज इस तरह काम करने लगे तो साधारण जनता कहां जाएगी? जिनके गोद में निश्चिंत होकर सोया जाए वही गर्दन काट दे तो फिर कौन रक्षा करेगा? भगवत पार्षद बोलते 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 हैं यद्यद आचरति श्रेयान और इतरस तद दीहते। जो लोग आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं, इतर छोटे लोग तो उनका नकल करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरते लोकस तदनुवर्तते, लोग नकल करते हैं वही प्रमाण होता है। तो यमराज को धर्म का ज्ञान नहीं है? एक बार भगवान नाम उच्चारण करने वाला का करोड़ों करोड़ जन्मों का पाप समाप्त हो जाता है। यह ज्ञान धर्मराज को नहीं है क्या कि तुम लोगों को भेज दिए? यह ज्ञान तो होना चाहिए ना। जमदूत तर्क करते हैं कि भगवान का नाम कब लिया, कब लिया? नारायण नाम उच्चारण किया तुम्हारे सामने ना। तो कहे तो अपने बच्चे का नाम पुकारा। कहते बच्चे का नाम नहीं है, ओरिजिनली नाम भगवान का है नारायण। और हजारों लोग नारायण नाम रख लें तो उनका नहीं है, भगवान का नाम है। तो कहे भगवान का नाम जानकर तो नहीं लिया? तो भगवत पार्षद कहते यही तो समझाना चाहते हैं, यही समझने वाली बात है। कोई अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम जप संकीर्तितम अघम पुंसो दहे देधो जथानल। यह नाम की वस्तु शक्ति है। कोई जानकर अनजान में आग का अंगार पकड़ ले तो क्या उसके हाथ को आग जलाएगी नहीं? एक छोटा बच्चा पकड़ ले खेलते हुए तो जलेगा कि नहीं? आग की वस्तु शक्ति है दाहिका, जलाती है। वैसे नाम की वस्तु शक्ति है, कोई जानकर उच्चारण करे चाहे अनजान में करे वो पाप को समाप्त करेगा। यह है सिद्धांत। यह ज्ञान यमराज को होना चाहिए और तुम लोगों को भी बताना चाहिए इत्यादि। तो ये भागवत भी कहता है जज्जता चरते श्रेष्ठ, गीता भी। इसलिए प्रत्येक वैष्णव इस परंपरा में है, अतः अपने हित के साथ दूसरों के हित का भी ध्यान रखें। लोग हमें देख रहे हैं, हम मंच पर हैं, अपना हित तो प्रथम है, जरूरी है, लेकिन चलो अपने विषय में लापरवाह हो तो तुम दूसरे का नाश करने का धर्म नहीं है ना, दूसरे को विनाश करना। दूसरे लोग हमको वैष्णव के रूप में देख रहे हैं, कभी हमें हमारे द्वारा अशास्त्रीय व्यवहार हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक शिक्षकों को, प्रत्येक वैष्णव को सावधान रहकर शिक्षा देनी चाहिए, केवल प्रवचन से नहीं, आचरण से। आचरण का मौन प्रभाव जो पड़ता है वो घंटों प्रवचन का नहीं पड़ता। इसलिए व्यास के प्रतिनिधियों का एक कर्तव्य है, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी वैष्णव हैं, भक्त हैं, सब व्यास के प्रतिनिधि हैं किसी न किसी रूप में। चाहे वो आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हों, चाहे अपरा प्रकृति के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा रहे हों, वे लोग भी व्यास के प्रतिनिधि हैं। सारा ज्ञान व्यास के द्वारा आया है। इसलिए जितने गुरुजन हैं, जितने टीचर हैं, सब व्यास के प्रतिनिधि हैं। और ठीक से समझे व्यास जी क्या कहना चाहते हैं। इन सब सिद्धांतों को बताकर व्यास जी भगवान की ओर मोड़ना चाहते हैं। और इसके साथ आज की पूर्णिमा इस रूप में भी विशेष महत्व रखती है कि आज से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। चतुर्मास प्रारंभ होने का अर्थ क्या है? दसम स्कंद के बीसवें अध्याय में जब सुखदेव गोस्वामी वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन करते हैं कि वृंदावन में ऋतुओं का स्थिति कैसे थी, तो लास्ट के श्लोक में कहते हैं कि चार प्रकार के लोग जो शरद ऋतु के वर्णन में कहते हैं कि चार प्रकार के लोग जो अपना काम बंद कर दिए थे चार महीना के लिए, वे अब शरद ऋतु के आते ही अपना काम प्रारंभ कर दिए। तो कौन कौन लोग काम स्टॉप कर देते हैं? बणिंग मुनि निपस्नाता निर्गम्यार्थान प्रपेदिरे, वर्ष रूधा यथा सीधा सौ पिंडान काल आगते। कहते हैं बड़िक व्यापारी बिजनेसमैन बरसात में नहीं बिजनेस करते, क्योंकि पहले एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कोई हवाई जहाज नहीं था, नौका से जाते थे, समुद्र के मार्ग से या नदियों से। तो नदियों में बाढ़ आ जाता है और पर्वत से उनको पार करना पड़ता था, तो बरसात में पर्वत के मार्ग भी दुरू हो जाते हैं, बहुत से नए नए वृक्ष पेड़ पौधा बढ़ जाते हैं, इसके कारण उनका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। तो बड़ी लोग चार महीना व्यापार इधर से उधर जाना बंद कर देते हैं। और मुनि साधक लोग, साधक दो कारण से बंद करते हैं, एक तो बरसात में बहुत से जीव जंतु बढ़ जाते हैं, पैदल चलने से हिंसा होता है, दूसरे जीव मरते हैं, इसलिए अपना बंद कर देते हैं। और प्रायः मुनि लोग एक गुफा में, किला में और गेस्ट हाउस में नहीं रहा करते थे, वो पेड़ के नीचे भजन करते थे, तो बरसात के पानी में उनको डिस्टर्ब होता है, बारिश में भींगना पड़ता है, इसलिए एक जगह किसी आश्रम में रहते हैं, वहीं साधन भजन नियमित रूप से करते हैं। और नीप राजा, राजा लोग दिग्विजय करते हैं, बड़ी बड़ी सेना लेकर चलते हैं, लेकिन वो भी बरसात में बाधित हो जाता है, बारिश होता है और नदियों में बाढ़ रहता है, इसलिए वो भी नहीं, चुप हो जाते हैं। और चौथा स्नाता विद्यार्थी, विद्यार्थियों के लिए बड़े बड़े स्कूल कॉलेज और बिल्डिंग नहीं था, पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे बेचारे आश्रम में, तो वो भी पढ़ाई अब बंद हो जाता है, चार महीना उनको एक जगह रखा जाता है, उनको शिक्षा दिया जाता है। तो ये चतुर्मास में चार महीना स्पेशल टाइम है साधकों के लिए, मुख्य रूप से इसमें मुनि, मुनियों के लिए एक स्थान पर बैठकर सत्संग करना, भगवान के विषय में चर्चा करना, विशेष रूप से कीर्तन करना, नाम जप करना, भागवत पर विचार करना इत्यादि। इसके कारण यह पूर्णिमा प्रसिद्ध है, क्योंकि आज स्टार्टिंग डे है इसका। और दूसरा है, इसको आज के दिन मैं पहले ही बता दिया, व्यास देव का जन्मदिन है, इस कारण से व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, और सनातन गोस्वामी की तिरुभाव तिथि है आज। तो सनातन गोस्वामी ब्रज में बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे अपने समय में, क्योंकि ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते थे और नवाब हुसैन शाह के दो विभाग को संभालते थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे और सुप्रीम जज भी। रूप गोस्वामी भी दो विभाग संभालते थे, सेनापति तो और बीत, ये दोनों विभाग रूप गोस्वामी संभालते थे, सेनापति तो भी करते थे और बीत विभाग भी। तो सनातन गोस्वामी सुप्रीम जज होने के कारण इनके नेचर में पंचायती था, कोई आपस में ब्रजवासी लड़ते थे और मधुकरी करने जा रहे हैं, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो, बड़ा प्रेम से सुनते थे ब्रजवासियों की झगड़ा और दो चार दस मिनट में फैसला कर देते थे। और ब्रजवासी इतना इनको आदर देते थे कि कभी कभी तो इनके पास आ जाते थे, बाबा हमारे यहाँ झगड़ा हो गया, थोड़ा समझा दीजिए, तो इनको बहुत फाइल नहीं देखना पड़ता था, जाते और कुछ ऐसी बातें करते कि ब्रजवासी शांत, लड़ते ही नहीं, इनके संकोच से लोग झगड़ा नहीं करते थे, इतने ब्रजवासी इनसे प्रेम करते थे, ब्रजवासियों के प्रिय हो गए थे कि जब राधा कुंड में इनका आज के तिथि को शरीर पूरा हुआ तो सारे ब्रजवासी सब जगह से दौड़कर राधा कुंड आ गए और इनके नाम पर सब लोगों ने सेविंग किया, मुंडन कराया, और मुंडन करा के सनातन गोस्वामी कहते थे मदन मोहन जी के गोद में हमारा समाधि होना चाहिए वृंदावन में, पहले ही बोलते थे। तो इनके शव को लेकर गिरिराज जी की परिक्रमा किए और फिर पैदल ही लेकर वृंदावन गए आज के दिन। तो इसके कारण मुंडन करके परिक्रमा किए गिरिराज जी के, तो अब इनके तिरुभाव की वार्षिकी मनाने जाने लगी, परंपरा एक चल गया। दूसरे साल फिर उसी तरह लोग सेविंग करके परिक्रमा किए, तो मुंडन कराने के कारण ब्रजवासी लोग मुड़िया कहने लगे, ये मुड़िया पूर्णिमा है। कौन पूर्णिमा? गिरिराज की परिक्रमा करें, मुड़िया पूर्णिमा। आज तो मुंडन नहीं कराते, लेकिन यह मुड़िया पूर्णिमा इसी रूप में फेमस है, और साल में सर्वाधिक भीड़ इसी समय है। न्यूज़पेपर वालों के अनुसार 80 से 90 लाख लोग चार दिन में परिक्रमा करते हैं। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक में लगभग 1 करोड़ लोग परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी का, सबसे ज्यादा भीड़। वो बरसात में, कभी कभी बारिश भी होता है, लेकिन लोग करते हैं परिक्रमा 24 घंटे रात दिन। आज के दिन परिक्रमा मार्ग में चले जाइए, आपको चलना नहीं पड़ेगा, लोग ठेल कर ले जाएंगे, इतना भीड़। और खासकर ब्रजवासियों का भीड़ रहता है। तो सनातन गोस्वामी के नाम पर भी यह पूर्णिमा फेमस है, मुड़िया पूर्णिमा। तो इस पूर्णिमा की चार विशेष संज्ञा है, आषाढ़ी पूर्णिमा चतुर्मास का प्रारंभ, व्यास पूर्णिमा व्यास का प्राकट्य तिथि, गुरु पूर्णिमा व्यास के सारे प्रतिनिधि, चाहे वो भगवान का फॉलो करें न करें, मायावादी हो चाहे जो भी हो, सभी लोग व्यास के प्रतिनिधि के रूप में अपनी पूजा आज स्वीकार करते हैं। आज संपूर्ण भारत में जहां तहां जो गुरु पद पर है उनके शिष्य लोग पूजा करते हैं, विशेष रूप से फूल माला देते हैं, रुपया पैसा देकर पूजा करते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा भी है, सारे गुरु लोग पूजे जाते हैं आज के दिन। यद्यपि वैष्णव समाज में भी कुछ रामानंदी लोग भी इसी पूर्णिमा को अपना व्यास पूजा स्वीकार करते हैं, लेकिन ये इतना बदनाम है कि गौड़ीय लोग, खासकर प्रभुपाद जी, इसको अच्छा नहीं माने कि इसको गुरु व्यास की प्रतिनिधि इसी डेट को गुरु पूर्णिमा स्वीकार करे, जैसे मायावादी लोग करते हैं। और ये गुरु पूर्णिमा के तो उनके जैसा नहीं, व्यास जी के जन्मदिन स्पेशल मनाएंगे और अलग अलग गुरुओं के जन्मदिन पर व्यास पूजा करेंगे, इस रूप में ये लोग कर दिए। क्योंकि एक ही भाव में दोनों नहीं हो सकता, वो लोग कुछ भी ज्ञान नहीं देते बल्कि भ्रमावक ज्ञान देते हैं, और गुरु पद पर आसीन है, पूजा ले रहे हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा के नाम से भी ये प्रसिद्ध तिथि है। और मुड़िया पूर्णिमा की व्याख्या तो मैं आपके सामने किया ही, सनातन गोस्वामी। तो चार पूर्णिमा, ये पूर्णिमा चार नाम से जानी जाती है, आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और मुड़िया पूर्णिमा। तो कुछ विशेष तिथियां विशेष कारणों से प्रसिद्ध हो जाती हैं, जैसे आज की पूर्णिमा प्रसिद्ध है, आने वाले भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान उस दिन आविर्भूत हुए, इसलिए वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। चैत्र पक्ष के, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी प्रसिद्ध है श्री राम नवमी के रूप में। नृसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी, गौर पूर्णिमा अपने अपने विशेष कारणों से प्रसिद्ध है, उसी प्रकार आज की पूर्णिमा प्रसिद्ध है। तो इस अवसर पर हम लोग भगवान व्यास देव के दिव्य संदेश को अमल करने, इसको अपने आचरण में लाने, और व्यास के मनोभीष्ट बिछड़े हुए अल्प मेधसा जीव को, जो कम बुद्धि वाले हैं, बेचारे दीनहीन हैं, जो भगवान को नहीं जानते हैं, उनको भगवान के तरफ मोड़ने के लिए हम संकल्पित हों। यह व्यास जी की सबसे बड़ी सेवा है, कृष्ण बहिर्मुख जीव को कृष्ण की ओर मोड़ना। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, लाखों करोड़ों हजारों परोपकारी कार्य, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, बड़े बड़ा हॉस्पिटल खोलना, प्यायू खोलना, कुआं बावली पोखरा बनाना, ये सब बड़े उपकारी कार्य हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन सारे उपकारिक कार्यों से बढ़कर है कोई कृष्ण बहिर्मुख जीव को कृष्ण की ओर मोड़ देना, यह सबसे बढ़कर है। तो यह है व्यास की सबसे बड़ी सेवा, इसके लिए व्यास देव आए। कलयुग के मंदा सुमंद मथयो मंद भागा उपद्यता, मंद बुद्धि वाले हम जीवों के लिए उन्होंने शास्त्रों को लिपिबद्ध कर दिया कि आप एक बार में सुनकर नहीं याद कर सकते तो बार बार पढ़ो और समझ करके भगवान की भक्ति करो। यह है व्यास जी का मनोभीष्ट और हम उनके इस आज जन्मदिन पर उनके संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारे अंदर ऐसी शक्ति दें जिससे हम बहिर्मुख जीवों को कृष्ण से जोड़ सकें। यही है व्यास की मनोभीष्ट, यही है श्रील प्रभुपाद की मनोभीष्ट, यही है श्री चैतन्य महाप्रभु की मनोभीष्ट, यही है समस्त वैष्णव आचार्यों का मनोभीष्ट। तो इसको हम अपने जीवन में अमल करें। इस शुभकामना के साथ हम व्यास देव के चरणों में विनीत दंडवत प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री। कोई जिज्ञासा? और सनातन गोस्वामी के विषय में विशेष रूप से हम संध्या के क्लास में सुनेंगे। आज सनातन गोस्वामी के साथ महाप्रभु का तीसरा मिलन और उसमें सनातन गोस्वामी की चर्चा होगी 7 से 9 बजे शाम को।
हरे कृष्ण भाई।
हरे कृष्ण।
इस गुरु पूर्णिमा पर गुरु की परंपरा में यदि कोई व्यक्ति बाय चांस यदि गलत आचरण कर देता है तो क्या उसे गुरु पद पर बने रहना या प्रचार करना अनिवार्य जरूरी है, कर सकता है?
लेकिन आप तो इसको स्वतः विचार कर सकते हैं, कर भी रहे हैं कि उसका बैड इम्प्रेशन पड़ता है ना, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है ना। अगर उसके द्वारा अवैधिक अवांछनीय कार्य कुछ हो गया तो समाज के लोग उसको व्यास के प्रतिनिधि के रूप में नहीं स्वीकार कर पाएंगे ना। और उसके प्रति दोष बुद्धि होने पर ज्ञान ग्रहण करने में एक अवरोध होगा ना। अगर कोई उसको दोष दृष्टि से देख रहा है तो उनके द्वारा कही हुई बात को स्वीकार नहीं कर सकता। कभी कभी देखिए, ज्ञान देने में बड़ी सावधान रहना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए या कुछ उठपटांग आचरण नहीं करना चाहिए। कभी कभी अभिभावकों के साथ क्या होता है कि बच्चे स्कूल कॉलेज में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो किसी विषय में कुछ भी जिज्ञासा कर देते हैं अपने बाप से, अपने माँ से। जो स्कूल में पढ़ते हैं कुछ उनको पढ़ते समय दिक्कत होता है, पूछ देते हैं। तो यदि नहीं ज्ञान है तो कोई पिता उसको अपने ढंग से समझाने का कोशिश कर दिया और स्कूल में जाने पर उसके टीचर मैडम कुछ दूसरी बात बताई तो बच्चा जानते हैं क्या कहता है? अरे पापा को तो कुछ पता नहीं है, ऐसे ही बोल दिए, देखो हमारी मैडम ऐसे बताई। और ऐसे ऐसे उसमें दोष बुद्धि हो जाता है। तो जब कभी अच्छी बात भी कहते हैं तो उसको भी नहीं सुनता है, फालतू बोलते होंगे, इनको कुछ ज्ञान नहीं है। तो इसलिए नहीं जानकारी है तो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, कदाचित बोल दिए और उनके आचरण में नहीं है, पिता कह दिए बेटा नशा नहीं खाना चाहिए, बीड़ी सिगरेट ये सब नहीं खाना चाहिए, और कदाचित करते हुए बच्चा देख लिया उन्हीं को, कहता है फालतू हमको कहते हैं नहीं करना चाहिए, अपने बीड़ी पीते हैं। एक बिहार की घटना है, एक भक्त ऐसे ही नया भक्त थे तो कभी कभी उनको बीड़ी पीने का आदत था, छुप कर पीते थे, भजन जप चालू कर दिए थे लेकिन आदत बस पीते थे। तो उनका छोटा सा लड़का 6-7 वर्ष का देख लिया था तो एक बार किसी गलती के कारण उसको एक तमाशा मार दिए। तो कहा हम गौर किशन जी से कह देंगे बीड़ी पीते हो। और एकदम सफर देख लिया था, वो जानते नहीं थे कि वो देखा है लड़का, और मैं वहीं कथा के लिए आया था तो कहा हम जाकर कह देंगे। एकदम सकपका गए बेचारे, क्या करें। तो किसी तरह समझाए और फिर एक दिन अंततः वो आकर मुझसे कहीं दिया। किसी तरह नाराज हुआ तो पिता से तो नहीं धमकी दिया लेकिन आकर कह दिया। तो मैं कहा अच्छा आप बीड़ी पीते हैं?
वो आपका बेटा कह रहा था, तो कहने लगे क्या कहूँ प्रभु जी, एक दिन और मुझको बहुत डरवाया और आज आपको कह ही दिया। तो कहने का मतलब है कि बच्चे देखते हैं, तो कोई अगर अपने जीवन में गुरु है और उससे गड़बड़ काम हो गया तो कुछ समय तक प्रायश्चित करना चाहिए, ठीक से भजन करना चाहिए, ताकि लोगों को ये एहसास हो जाए कि बेचारे से दुर्घटना हो गई थी और ये साधन भजन करके फिर ठीक अपने स्थिति में है, तो फिर उनकी बात को लोग सुनने के लिए तैयार होंगे। और नहीं तो उसी अवस्था में बने हैं और ऐसा ही कंप्लेन आता रहे और गुरुता बना रहे, दोनों संभव नहीं है, दोनों एक साथ संभव नहीं है। कुछ ब्लाइंड फॉलोअर शिष्य भले स्वीकार कर सकते लेकिन नए लोग नहीं स्वीकार कर सकते। ठीक है, और कुछ इधर इधर दो
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ,
ये प्रभुपाद जी को सत्तावसर अवतार में लेना चाहिए या इस डिवाइन ग्रेस अलग से है?
नहीं, प्रभुपाद जी सत्यावेश अवतार अपने को तो नहीं स्वीकार किए हैं, ही डिवाइन ग्रेस कम है क्या? ये कम नहीं है, परफेक्ट है। सत्यावेश अवतार अगर एक दृष्टि से कहा जाए तो वो गलत भी नहीं है, जब हम उनको भगवान ही मान सकते हैं। एक शिष्य के लिए गुरु भगवान होता है, तो जिस रूप में भगवान की शक्ति कृपा शक्ति उतर कर आई तो सत्यावेशावतार भी कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक समस्या भी है जो आज साईं के साथ समस्या है, दूसरे लोग नहीं स्वीकार करेंगे ना, शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। अपने श्रद्धा को दूसरे पर लाद नहीं सकते, दूसरे एक समाज के लोगों पर लाद नहीं सकते हैं, इसलिए आदर करना चाहिए लेकिन दम सीमा के बाद अति करने के बाद दूसरे लोग नहीं स्वीकार करेंगे और शायद गुरु भी नहीं स्वीकार करेंगे। तो जहां तक जो सीमा है वहीं तक ठीक है, अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति अपने तक रख सकते हैं, ज्यादा लोगों के सामने कहने पर लोग अति प्रशंसा भी निंदा मानी जाती है। ठीक है, और
हरे कृष्णा रुजी, आप प्रारंभ में बता रहे थे गर्भोदक क्षीरोदक शाही विष्णु, और तो वो गर्भोदक शाही विष्णु जो है वो पानी के अंदर है ना रुजी, पानी के स्तर पे है
पानी के? अच्छा, इसमें भी भेद है, तो पानी के बाहर रहे या पानी के भीतर रहे कोई अंतर नहीं है, लेकिन जहां तक मैं पढ़ा हूं सुना हूं कि वो जल आधा भरकर उसके स्तर पर शयन करते हैं, उसके ऊपर, और कहीं कहीं ऐसे भीतर भी लोग कहते हैं कि वो कमल भीतर से निकला नीचे है, लेकिन इस विषय में मैं इतना कन्फर्म नहीं बता सकता। जैसा कि सुना हूं उसके अनुसार तो ऊपर है, लेकिन ऐसे आपकी बात भी सुना हूं कि नीचे भी कुछ लोग कहते हैं, तो मैं इसको कन्फर्म नहीं पढ़ा समझा हूं, इसलिए इसको नहीं बतला सकता।
प्रभुजी एक चीज और, प्रभुजी बहुत अच्छे से आपने समझाया वो गुरु तत्व का कि कैसे जो गुरु तर की शक्ति है जो इस मनुष्य के शरीर में रहने वाले व्यक्ति को प्राप्त हुई है, हाँ। वो बहुत ही विशेष है और उसके शरण हम लेते हैं, और ऐसा नहीं कि अगले जन्म में फिर वही गुरु वही जीव आते हैं, पर वो शक्ति किसी और के माध्यम से भी आ सकती है आपको आश्रय देने के लिए और भगवान के धाम ले जाने के लिए। फिर दो एक नजर से ऐसे हम सुनते हैं कि वो बिल्लो मंगल ठाकुर के जो गुरु थे वो अगले जन्म में वेश्या बनकर के आए, जिनकी स्टेटमेंट से वो प्रभावित होकर के वापस भक्ति में आ गए, और तो उसको सुनकर ऐसे सुनते हैं कि कई बार सुना है कि ऐसे गुरु जो है वो अगले जन्म में भी आते रहते हैं जब तक शिष्य का उद्धार नहीं हो जाता, तो क्षमा करना है।
तो अच्छा फजीहत गुरु का करेंगे ऐसे नलायक शिष्य लोग ऐसे ऐसे शिष्य होते रहेंगे वो आते रहेंगे। अरे कभी कभी वही अपवाद घटनाएं हो गई होगी बिल्लू मंगल ठाकुर के लिए, या चिंतामणि गुरु मम का यह अर्थ नहीं है कि वो पहले भी गुरु थे, अपने ही जीवन में जो चिंतामणि से ज्ञान प्राप्त किए, इसलिए गुरुता के रूप में वर्णन किए। अब मैं तो प्रथम बार सुन रहा हूँ कि वो पहले जन्म में गुरु थे इसलिए चिंतामणि के रूप में वेश्या के रूप में आ गए। ऐसा नहीं है जो भी हो, लेकिन चिंतामणि मम गुरु अपने मंगलाचरण में लिखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि कई अर्थ किया गया है। चिंतामणि भगवान को भी कहते हैं, वो मेरे गुरु हैं जो चैत बपु चित में ज्ञान देते हैं। चिंतामणि केवल वेश्या के लिए नहीं कह रहे हैं, अथवा कह भी रहे हो तो इसी जीवन में उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या दिक्कत है। इसका अर्थ यह थोड़े है कि वो पूर्व में हो सकता है आपकी बात भी सत्य हो, लेकिन ऐसा अपवाद है। वही गुरुता वही शक्ति। मान लीजिए आपकी कोई भी चार्जिंग करना है तो जहां कनेक्शन है वहां चार्ज लगा लीजिए, हो जाएगा मोबाइल चार्ज। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर लगाना है और वही करेगा हर बार। वह शक्ति वही कृपा वही रहेगी हूबहू, लेकिन व्यक्ति अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। और गुरुता केवल दीक्षा को नहीं कहते हैं, हमारी परंपरा भागवती परंपरा है, ज्ञान के को ही वास्तव में गुरुता कहते हैं, ये परंपरा कहते हैं। जीव गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवासाचार्य को ज्ञान दिया। तीनों इनके दीक्षित शिष्य नहीं थे, तीनों दूसरे से दीक्षा लिए थे, ज्ञान इनसे लिए, लेकिन हमारी परंपरा में जीव गोस्वामी के शिष्य के रूप में उनको जाना जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर से दीक्षा नहीं लिए थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, लेकिन उनके ज्ञान को मानते थे बड़ी गरिमा के साथ। बलदेव विद्याभूषण दीक्षा नहीं लिए थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से, दूसरे के शिष्य थे, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को उन्होंने ज्ञान प्रदाता के रूप में स्वीकार किया। तो इस तरह ज्ञान तो वही भगवत कृपा जो है वो किसी के माध्यम से जीव का हित करती है, वही है गुरुता और वही वास्तव में गुरु है। इसीलिए शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की जो बातें की जाती हैं दोनों का महत्व है। दीक्षा गुरु का विशेष महत्व इसलिए दे दिया जाता है कि व्यक्ति सैद्धांतिक रूप से भटके ना। जैसे एक अविवाहिता ज्योति को विवाह के द्वारा एक वैदिक सिद्धांत में बांध दिया जाता है, अविवाहिता निर्णय नहीं कर पाती कौन उसका पति है। आज के युग में देख ही रहे हैं कितने फ्रेंड के साथ घूमते रहते। तो इस तरह की फ्रेंडशिप वाला व्यभिचार न हो सके इसलिए वैदिक मर्यादा एक के साथ बांधता है। तो उसी प्रकार एक दीक्षा के द्वारा व्यक्ति को भटकने का चांस छूट जाता है। दीक्षा नहीं लिया है तो मनमाना किसी के पास चला जाएगा, और दीक्षा लेने के साथ वैदिक सिद्धांत है कि उसकी आज्ञा के अनुसार ही करना चाहिए। वो कह दिया नहीं नहीं तुमको वहां नहीं जाना है, क्या जरूरत है, मंदिर में आओ, किसी तांत्रिक फांत्रिक के पास जाने के निर्मल बाबा के पास मत जाओ, तो मना कर देगा तो मान जाएगा ना, ऐसे तो स्वतंत्र है तो चला जाएगा। इसलिए दीक्षा गुरु का विशेष महत्व हो जाता है। लेकिन इस भगवत कृपा को ज्ञान के रूप में ग्रहण किया जाता है वैष्णव के द्वारा। और सभी पूज्य है, देखिए मंगलाचरण के श्लोक में वंदे हम श्री गुरु हो, एक हो गया गुरुन वैष्णवांश, एक से काम नहीं चला। अगर वंदे हम श्री गुरु कह दिए तो हो गया ना गुरु का प्रणाम, तो फिर बहुवचन में कहते हैं गुरुन। अब कौन गुरु, वैष्णवांश, तो कहें कौन वैष्णव जो 20 साल पहले दीक्षित है वो, कहने नहीं सभी जो नया है वो नए से और सीनियर जूनियर सब टोटल सबके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, सबकी कृपा की अपेक्षा है। गुरुन वैष्णवांश, सारे वैष्णव को हम गुरु मानते हैं। तो गुरु की एक सीमा नहीं है कि बस यहीं तक रह गया, लेकिन दीक्षा गुरु का विशेष महत्व है कि वो भटके ना, उनके आदेश के अनुसार चले। इसलिए हरे कृष्ण, ठीक है, जय श्रील प्रभुपाद की जय जय।